पूज्य संत महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, मानव जीवन को साधन युक्त बनाने के लिए मानव सेवा संघ के नियमों में से एक नियम श्री महाराज जी ने बहुत ही क्रमिक रूप में रखा है। शरीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी और अहम को अभिमान शून्य करना है। सबसे स्थूल स्तर से आरंभ किया गया है। यह कहा गया कि शरीर को श्रमी बनाए रखना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि मन को संयमित करने के लिए शारीरिक श्रम एक बड़ा ही स्वाभाविक साधन है। आलसी बनकर रहने से मन के भीतर बहुत अधिक उथल पुथल होता रहता है, अनेक प्रकार के संकल्प उठते रहते हैं। परंतु जिन साधकों में संयम, सदाचार, त्याग और प्रेम इन तत्वों को अपने को साधन युक्त बनाने के लिए स्वीकार किया, वे जब शरीर के द्वारा श्रम करते रहते हैं तो श्रम काल में वर्तमान शक्ति का सदुपयोग होता रहता है। व्यर्थ चिंतन के लिए बेकारी नहीं रहती, यह एक खास बात है। और एक बड़े महापुरुष के संबंध में मैंने सुना है, स्वामी जी महाराज ने बताया है कि महर्षि दयानंद जी से किसी ने पूछा कि आपने काम को कैसे जीता, तो उन्होंने कहा कि काम करके। विकारों पर विजय कैसे पाया, तो महर्षि ने उत्तर दिया कि परिश्रम करके। शरीर को परिश्रमी बनाए रखना मन को संयमित रखने में बहुत सहायता पहुंचाता है। जो भी कोई भाई बहन अपने चित्त को शुद्ध और शांत रखना चाहे, मन को संयमित रखना चाहे, उनको शरीर के द्वारा काफी श्रम भी करना चाहिए। महात्मा गांधी के संबंध में एक सज्जन के मुख से मैंने सुना है। वे सज्जन महात्मा गांधी के पास काफी रह चुके थे। ऐसे ही एक दिन संयम सदाचार की बात हो रही थी तो वे कहने लगे कि बापू के पास रहकर मैंने देखा है, सारा दिन वे खूब परिश्रम करते ही थे, काम की तो कोई सीमा नहीं थी गांधी जी के पास। इतने बड़े देश को इतनी पुरानी गुलामी से मुक्त करने का प्रश्न बड़ा जटिल प्रश्न था और कई तरह की तकलीफें देश के लोगों को थीं। सब बातों के लिए गांधी जी का हृदय बहुत पीड़ित था। वे बहुत काम करते थे, लेकिन जब सोने का समय आ जाता और बापू को यह मालूम होता कि मुझमें कुछ एनर्जी शेष है, तो कुटिया में से निकल करके बाहर रास्ते पर दौड़ लगाने लगते थे। दो चार युवक जो गांधी जी की सेवा के लालच में उनके साथ रहते थे, जब बापू दौड़ना शुरू करते तो वे लड़के भी दौड़ उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते, सोचते कि पता नहीं बापू दौड़कर कहां जा रहे हैं। दो चार चक्कर लगा के जब गांधी जी को मालूम होता कि अब शरीर की एनर्जी पूरी खत्म हो गई तब आकर के बिस्तर में लेटते और जैसे ही सेवा में रहने वाले लड़के उनके पैर दबाना शुरू करते वे एकदम गहरी निद्रा में सो जाते। गांधी जी ने सदाचार का जो अर्थ लिया, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का जो अर्थ लिया, तो बड़ा व्यापक अर्थ है। अपने सप्त महाव्रत कथा में उन्होंने एक जगह यह भी लिखा है कि सर्वेंद्रिय संयम से मन संयमित होता है, और ऐसा भी लिखा है कि अन्य इंद्रियों को तो खुली छूट दे दो, देखने के लिए, सुनने के लिए, चखने के लिए, और एक विशेष जननेन्द्रिय को वश में करना चाहो तो यह बहुत प्रकार की बाधाओं को उत्पन्न करने वाली बात हो जाती है। गांधी जी ने लिखा है कि ऐसा करना आग में हाथ डालकर जलने से बचने के समान व्यर्थ चेष्टा है। बहुत गंभीर बात है। गांधी जी के साहित्य को पढ़ करके उसका बहुत आधुनिक अर्थ भी मेरी समझ में आया। सबसे पहले उन्होंने सप्त महाव्रत कथा में सत्य की चर्चा उठाई और उसमें से उन्होंने निकाला कि परमेश्वर सत्य है, ऐसा कहना तो ठीक ही है, लेकिन सत्य ही परमेश्वर है ऐसा कहना मुझको अधिक मौजू मालूम होता है। उसके बाद जिसने सत्य का अनुराग जीवन में पालने का निश्चय किया है, जिसने सत्य का पुजारी होना पसंद किया है, उसके जीवन में सदाचार का बड़ा भारी व्यापक अर्थ होगा कि किसी भी स्तर पर उसको किसी भी प्रकार से सत्य का पल्ला नहीं छोड़ना है। सदाचार का मामूली अर्थ भी हम लोग लेते हैं और वह भी बड़े काम का है। मामूली अर्थ यह है उसका कि आहार विहार में संयम रखा जाए, सादगी रखी जाए, वासनाओं को उद्दीप्त करने वाला पोशाक न पहना जाए, सदाचार में यह सब भी आता है। मन के विकारों को उत्तेजित करने वाला आहार न खाया जाए, विकारों को जगाने वाली वाणी न सुनी जाए, बहुत कोमल नरम बिस्तर पर न सोया जाए, ये सारी बातें सदाचार के अर्थ में हमारे मनीषियों ने लिया। क्योंकि यदि अन्य इंद्रियों को सुख लोलुपता की खुराक देते रहो और सर्वेंद्रिय संयम की बात सोचो तो हो नहीं सकता है। हर तरफ से विषय लोलुपता का त्याग करके किसी भी प्रकार के पुराने भोगों के कारण जो भोग प्रवृत्ति का राग अपने में अंकित हुआ है, उस राग को उत्तेजित होने का अवसर नहीं देना चाहिए। इसलिए मनीषियों ने कहा कि सादे कपड़े पहनो, सादा भोजन लो, विकार युक्त बातें मत सुनो, विकार को उत्तेजित करने वाले कोई भी काम मत करो, अर्थात किसी इंद्रिय को विषय लोलुप मत होने दो। यह बाहरी बात हो गई, व्यवहार की बात हो गई। साधक समाज के लिए बहुत आवश्यक है कि वह शरीर को श्रमी और मन को संयमी पूरी तरह से बनाए, इस व्रत को अपने जीवन में अपनाने के लिए सब ओर से विकारों को उत्तेजित करने वाले विषयों का दरवाजा बंद कर देना चाहिए। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, गांधी जी के जीवन में प्रार्थना की बड़ी महिमा थी। प्रार्थना करने जब वे बैठते थे तब ऐसा लगता था जैसे ईश्वर के साथ उनकी बड़ी गहरी एकता हो गई है। यह सत्यनिष्ठ होने का प्रभाव है। वे जब किसी व्रत को आवश्यक मानते थे तो उस व्रत का प्रयोग अपने पर करते थे। प्रयोग करने में उनको जो जो बातें सूझती रहती थीं, उन बातों को फिर आश्रमवासियों के हित के लिए बताते थे। सदाचार का अर्थ उन्होंने यह लिया कि मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, किसी भी तरह से सत्य का सहारा कभी न छोड़ा जाए, न किसी लाभ के लोभ से और न किसी हानि के भय से। जो सदाचार और संयम उन्होंने अपनाया उसमें भी इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि मुझको सच्चा रहना चाहिए। सच्चा रहने का मतलब क्या है कि मन में विषयों का लालच रखो और ऊपर से समाज को दिखलाने के लिए संयमी बने रहो तो यह ठीक बात नहीं है। बाहर से तो विषय लोलुप होने की बात छोड़ ही दो, अंदर से अगर इस तरह की बात कोई पैदा हो रही है तो उसको भी जड़ से उखाड़ने की चेष्टा करो। यह नहीं कि भीतर भीतर विषयों के चिंतन का मजा लेते रहें और बाहर बाहर इंद्रियों के दरवाजे बंद रखने की चेष्टा करें, तो ऐसा करने में व्यक्ति दंभी हो जाएगा, उसका सदाचार खंडित हो जाएगा। सादा कपड़ा पहनना और अल्प सात्विक आहार रखना इतना ही पर्याप्त नहीं है। भीतर से सुख भोग की प्रवृत्ति की जड़ काटना सदाचार का मूल आधार है। गांधी जी ने अपने पर प्रयोग करके देखा। वे यह कहते थे कि विकार की उत्पत्ति हो और हम उसको रोकें, यह तो प्रारंभिक प्रयास अपना हो सकता है, लेकिन आगे चल करके मेरा जीवन ऐसा हो जाना चाहिए कि विकारों की उत्पत्ति ही न हो। और इसी प्रयास में उन्होंने जब ब्रह्मचर्य का व्रत लिया तो शरीर में एनर्जी के रहते हुए आलस्य में कभी बिस्तर में लेटते नहीं थे। उन्होंने अपने पर प्रयोग करके देखा था और उसका यह निष्कर्ष निकाला था कि शरीर में एनर्जी रहेगी और संसार की सेवा में उसको नहीं लगाओगे तो वह एनर्जी तुम्हारे भीतर पुराने भोगे हुए सुखों के प्रभाव से सुख की वासनाओं को जगाएगी। इतना गहरा अर्थ उन्होंने सदाचार का लिया। जीव से स्वादिष्ट वस्तु के खाने का लालच न छोड़ो और आहार में स्वादिष्ट वस्तुओं को सम्मिलित करना छोड़ दो, तो इसको उन्होंने सदाचार नहीं कहकर मिथ्याचार कहा। भीतर से उठने वाली वासनाओं का भी सर्वांश में त्याग कर देना बहुत जरूरी है। यह कैसे होगा? अब स्वामी जी महाराज की बात और बापू की बात एकदम एक साथ मिल जाती है। कैसे होगा? सत्य की निष्ठा से होगा। सत्य की निष्ठा से व्यक्ति के जीवन में अविनाशी से रस आने लगेगा। अविनाशी रस जब आने लगता है तो सब भोग प्रवृत्तियों का रस फीका हो जाता है, फिर उसमें कोई मजा नहीं मालूम होता, नरक के समान लगने लगता है। ये महापुरुष हुए संसार के, जिन्होंने अपने जीवन को कसौटी पर कसा और तपश्चर्या के द्वारा ऊंचा उठ करके साधारण जन समाज को ऊंचे उठने का मार्ग दिखाया, उन लोगों की जो वाणी है उस वाणी की सहायता लेकर हम लोग स्वयं अपने जीवन को प्रयोग में डाल सकते हैं। अब जो सदाचारी होना चाहता है उसके जीवन में किसी भी स्तर पर कहीं भी मिथ्याचार नहीं आना चाहिए। गांधी जी का जीवन सत्य निष्ठा का ज्वलंत उदाहरण है। चंपारण सत्याग्रह के इतिहास में एक प्रसंग आया है कि नील की खेती में काम करने वाले मजदूरों पर अंग्रेजों के अत्याचार को दूर करने का प्रयास चल रहा था। तत्संबंधी कागजात सामने रखकर अंग्रेजों से विचार विमर्श की मांग गांधी जी कर रहे थे। वे लोग बात को उलझा रहे थे। चंपारण निवासी कई सत्याग्रही भाई गांधी जी के साथी बन गए थे। उनमें से एक भाई अंग्रेजी दफ्तर में काम करता था। वह आवश्यक फाइल को चुरा लाया और कहने लगा, यह कौन सी बड़ी बात है, गांधी जी कागज मांग रहे हैं और अंग्रेज दे नहीं रहे हैं, क्या बात है, मैं उठा लाता हूं। बापू के सामने फाइल ले आया और कहने लगा कि बापू आप कागज मांग मांग कर क्यों हैरान हो रहे हैं, वे तो मांगने से देंगे नहीं, लीजिए मैं चुरा लाया हूं, आप देख लीजिए। बापू ने देखा नहीं, फाइल को छुआ नहीं, बहुत ही गंभीर मुख मुद्रा से बोले कि नहीं भाई, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जो सत्य का पुजारी है, जो सदाचारी है, वह मिथ्या का सहारा नहीं ले सकता। सत्य का आग्रह असत्य का सहारा नहीं ले सकता। मैं तो उन्हीं से मांगूंगा और उन्हीं को देना पड़ेगा। तुम इस फाइल को जैसे ले आए हो वैसे ही रखाओ, खुद भी मत देखो, मुझको भी मत दिखाओ, किसी को मत दिखाओ, ज्यों का त्यों वापस ले जाकर दफ्तर में रख दो। जो परमात्मा का प्रेमी होना चाहता है, जो सत्य का पुजारी होना चाहता है, जो सदाचारी होना चाहता है, उसके लिए सत्य के आचार में यह मिथ्याचार शामिल करना बिल्कुल गलत है। इतना बड़ा अर्थ गांधी जी ने सदाचार का लिया था। उनके सामने बड़ी कठिन समस्या थी, उसको सुलझाने के लिए उनको बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ी, बहुत बार अपमानित होना पड़ा, लेकिन वे सत्याग्रही थे, सत्य के आग्रह को सफलता मिली, अंग्रेजों को झक मारकर फाइल अपने हाथ से ही मिस्टर गांधी के सामने पेश करना पड़ा। आपने देखा, चोरी की हुई चीज उन्होंने नहीं ली, कभी नहीं लिया, सत्य पर डटे रहे। तो जो वे चाहते थे
तो पूरा हुआ।
ऐसे कितने उदाहरण मेरे सामने विद्यमान हैं कि गांधी जी ने सदाचार को अपनाया तो उसको हद तक निभाया। परिणाम क्या हुआ कि जैसे जैसे सत्य की प्रतिष्ठा उनके जीवन में होती गई, वे अधिक से अधिक सत्य के नजदीक पहुंचे। जहां वे प्रार्थना के लिए शांत होकर के बैठते कि सत्य के साथ उनका ऐसा तादात्म्य हो जाता था कि कोई राजनैतिक साथी उनका उन उपायों को सोच ही नहीं सकता था जो उपाय सत्य से तादात्म काल में गांधी जी के भीतर देश के उद्धार के लिए सूझ जाते थे। उनके राजनैतिक साथी लोग जब पूछते थे कि बापू आपने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया, इसमें तो यह खतरा हो सकता है, इस प्रकार के घाटे की संभावना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह प्रोग्राम आपने कैसे बना लिया, तो गांधी जी कह देते मैं कुछ नहीं जानता हूं, यह सत्य की आवाज है, मुझको इसी पर चलना है, आई मस्ट बिकॉज इट कम्स फ्रॉम विदिन, और जरूर इस पर चलना होगा। गांधी जी भरी सभा में प्रार्थना करते थे, कितने कितने हजार हजार लाख लाख लोग बैठते थे उनके साथ, और जैसे ही उन्होंने धुन लगाई राम नाम की और चुप हो गए, वैसे ही उनकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती थी। अपने लोगों का हाल देखो, एकांत चाहिए, साउंड प्रूफ रूम चाहिए, तब भी दिमागी हलचल खत्म नहीं होती है। और उस सत्यनिष्ठ साधक को देखो, इतने बड़े जनसमूह में गांधी जी जब आंख बंद कर लेते, परमात्मा की याद में, सत्य की आराधना में, तो तत्काल ही शरीर और संसार की विस्मृति हो जाती थी। एकदम सत्य से ऐसा सीधा संबंध उनका होता था, इतना अच्छा अनुभव उनको मिलता था कि बाहर में सारी दुनिया में तूफान मची हो, तब भी गांधी जी अपने कदम से एक इंच इधर उधर नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उनमें सत्य का बल था। सदाचार शब्द का यह अर्थ है। सात्विक सत आचार, इतना गहरा अर्थ हम लोगों को भी लेना चाहिए। अब दूसरी बात देखो, जो भी कोई साधक सदाचारी होकर रहना चाहता है, उसके मन में, वचन में, कर्म में, भाव में कहीं भी मिथ्याचार का प्रवेश नहीं चाहिए। इसका बड़ा प्रयोग किया गांधी जी ने, और सत्य से अभिन्नता को पाया। जब मैं मानव सेवा संघ का नियम पढ़ती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि महापुरुषों के भीतर एक ही सत्य प्रकट होता है, मुझको बड़ा आनंद आता है। स्वामी जी महाराज के भीतर यही सत्य प्रकट हुआ और उन्होंने हम मानव सेवा संघी भाई बहनों की मदद के लिए नियम के रूप में बना के बता दिया। क्या नियम बता दिया? दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना। बड़ा भारी सदाचार है इसमें। जिसने सत्य को पसंद किया उसको अहिंसा पसंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य में हिंसा नहीं है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को एक ही सिक्के के दो पहलू के समान बताया है। और जो किसी रूप में हिंसा पसंद करता है वह सत्य का पुजारी हो नहीं सकता। अहिंसा को गांधी जी कहां तक ले गए कि वे कहते हैं कि आधी रोटी खाने से अगर पेट भरता है तो आधी रोटी के बाद एक ग्रास भी तुम ज्यादा खाते हो तो प्रकृति के धन की चोरी करते हो। तुम्हारी जितनी जरूरत है प्रकृति ने उतना ही पैदा किया है। अगर एक ग्रास भी स्वाद के कारण तुमने बेसी खा लिया तो प्रकृति के धन की चोरी की, उसके बदले में किसी को कम खाकर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के साम्राज्य में उतना ही उपजता है जितने प्रकृति के प्राणी हैं। तुमने बेसी खा लिया तो किसी को भूखा रहना पड़ेगा, और तुम्हारे बेसी खाने से कोई भूखा रहता है तो यह हिंसा है। जितने अन्न से पेट भरता है उससे एक ग्रास बेसी खाना हिंसा है, और जो हिंसा करता है वह सत्य का प्रेमी नहीं हो सकता। जो सत्य का उपासक नहीं है वह परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। अब देखिए हमारा आपका रोना क्या है, क्या बताएं? नाम जपते जपते इतने दिन बीत गए, हृदय में प्रेम नहीं उपजता। अरे भाई, प्रेम कोई जादू मंत्र से उपजता है? देखो, यदि वचन में सत्य है तो जीवन में भी सत्य होना चाहिए। परमात्मा का उपासक जो है उसे सत्य का उपासक होना ही पड़ेगा, और किसी भी अंश में, वचन में, व्यवहार में, भाव में, चिंतन में, कहीं भी छल प्रपंच रखते हो, छिपाव दुराव रखते हो, कहीं भी मिथ्या को आश्रय दिया है तो चैलेंज है कि भगवान की भक्ति आ जाए। स्वामी जी महाराज को सूझा कि निर्बलों पर बल का प्रयोग करना सत्य से दूर होना है, परमात्मा से दूर होना है। मानव सेवा संघ के प्रेमियों के लिए उन्होंने नियम बना के रख दिया। क्या कहा? दूसरों की दुर्बलता को अपना बल मत मानो। किसी की दुर्बलता पर हम अपने बल का प्रयोग करके अपने को बलवान महसूस करते हैं तो सत्य से बहुत दूर हो जाते हैं। कहां सत्य, कहां परमात्मा और कहां बल का दुरुपयोग करने वाला, दोनों के बीच बहुत दूरी आ गई। चतुराई चालाकी से भोले भाले अनजान व्यक्ति पर हम हावी होना चाहते हैं तो सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं। गांधी जी के जीवन में क्या हुआ था? बड़ी अच्छी सरस सुंदर घटना है। गांधी जी बैडमिंटन खेलते थे। एक दिन खेलने आए तो साथ में खेलने वाली बहन के दाहिने हाथ में कुछ तकलीफ थी, उन्होंने पट्टी बांधी थी और बाएं हाथ से रैकेट उठाया बैडमिंटन खेलने के लिए। बापू ने जल्दी से अपना रैकेट भी दाएं हाथ से बाएं हाथ में ले लिया। वे बहन पूछने लगी कि बापू, मेरे तो दाहिने हाथ में दर्द है इसलिए मैंने बाएं हाथ में रैकेट लिया है, आपने क्यों बाएं हाथ में लिया? तो कहने लगे कि देखो, मैं दूसरों की दुर्बलता से अनुचित लाभ उठाना नहीं चाहता, तुम्हारा दाहिना हाथ ठीक नहीं है, बाएं हाथ से खेलोगी तो मुझको भी बाएं हाथ से खेलना चाहिए। महापुरुष जो होते हैं उनकी जीवनी पहले होती है और कथनी पीछे होती है। कितना सुंदर मेल है। देखिए स्वामी जी ने लिखाया है, दूसरों की दुर्बलता को अपना बल न मानो। और गांधी जी की जीवनी में बच्चों के लिए जो छोटी छोटी किताबें निकली हैं उनमें बापू के जीवन की ये छोटी छोटी घटनाएं निकली हैं, उनमें उन बहन ने खुद ही लिखा है कि बापू कितने सत्यानुरागी हैं। अगर कोई दुर्बल उनके सामने आया है तो उसकी दुर्बलता पर अपने बल की महिमा नहीं दिखाएंगे। उस दिन बापू ने दाहिने हाथ में रैकेट लिया ही नहीं। इसका नाम है सदाचार। सत का आचार सदाचार कहलाता है। साधक समाज के लिए जहां अहम को अभिमान शून्य करने के पॉइंट तक पहुंचने की बात है, वहां प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में छोटी छोटी बातों में भी सदाचार का पालन बहुत आवश्यक है। समझ में आया? अब आगे सोचिए। आहार विहार में, रहन सहन में, बोल चाल में, निकटवर्ती जन समुदाय के साथ काम करने में और फिर उससे अलग होकर सत्य की उपासना में, सत्य की निष्ठा में, अंत समय तक जब तक अहम का नितांत अभाव न हो जाए तब तक हम लोगों के जीवन के किसी भी पहलू में थोड़ा भी दिखावे का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर हम दिखावे का सहारा लेते हैं, जैसे कि बाहरी समाज के साथ हमारा एक रूप है और भीतर भीतर कुछ दूसरा रूप है, अनेक प्रकार के विकारों से हम पीड़ित हैं, तो ऐसा दिखावा अगर हम रखेंगे तो कभी भी हमें सफलता नहीं मिल सकती। इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। साधक समाज के हित के लिए मानव सेवा संघ की प्रणाली में जो प्रस्तुत किया गया मूक सत्संग और व्यक्तिगत सत्संग, वह मुझे बहुत उपयोगी मालूम होता है। आपके पास बैठ करके बातें करना मेरे लिए आसान है। भाई बहनों के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए आसान है और अकेले में बैठकर अपने को देखकर अपने भीतर जिन असाधनों की गहरी जड़ बैठी हुई है उनको देखना, उनको समझना, उन्हें खोदकर निकालना, उनका सर्वांश में नाश कर डालना अधिक कठिन बात है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जिसने अपने जीवन की समस्याओं को नहीं सुलझाया उसके लिए व्याख्यान देना हानिकारक साबित हो सकता है। जिसने अपने भीतर से वस्तु, व्यक्ति, शरीर आदि पर से अपना अधिकार को नहीं उठाया उसके द्वारा सेवा प्रवृत्ति लाभदायक होने के बजाय हानिकारक साबित हो सकती है। सोचिए। तो मैं अपने साधक भाई बहनों को याद दिलाती रहती हूं, प्रवृत्ति जितनी आवश्यक है, निवृत्ति की शांति में अपना नंगा चित्र देखना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। अन्य भाई बहनों के साथ बैठकर जीवन की समस्याओं पर विचार करना जितना आवश्यक है, अकेले में चुपचाप से अपने भीतर झांक करके भीतर की गुत्थियों को सुलझाना उससे भी अधिक आवश्यक है। और जैसे एक एक कदम सूझता जाए, व्यक्ति उससे आगे बढ़ता जाए, तो जब जीवन में सत्य का बल आ जाता है, जब अपने ही में विद्यमान परमात्मा के सानिध्य का अनुभव व्यक्ति को हो जाता है, तब वह बाहर के सब आंधी तूफान को अचल होकर सह लेता है। सत्य का बल अगर भीतर प्रकट नहीं हुआ, परमात्मा की सन्निधि का, उसके नित्य निरंतर उपस्थित होने का बल अपने में नहीं आया, अनुभव अपने में नहीं आया, तो क्या होता है कि बाहर से जहां दो चार व्यक्तियों ने आलोचना कर दी तो बस गुण का अभिमानी आलोचना सुनते ही क्रोधित हो जाता है। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति भी हैं, सदाचार के आधार पर जिनको सत्य का बल प्राप्त नहीं हुआ, वह अधीर हो जाता है, घबरा जाता है, दोनों ही फेल कर जाते हैं। मैंने बहुत ही सहज भाव से ईश्वर की उपासना, सत्य की उपासना, सदाचार में रहने वाले व्यक्तियों के निकट बैठकर उनकी वाणी को सुना, उनके जीवन को देखा, तो बाहर से बहुत ही मामूली मामूली दिखने वाले लोगों में मैंने ऐसा बल देखा कि क्या बताएं, आश्चर्यचकित होकर रह जाती हूं। कभी कभी मैं अपने को टटोल टटोल कर अपने आप मन में लज्जित होती रहती हूं कि देखो, इन्होंने कभी समाज के सामने दर्शित नहीं किया कि मैं साधक हूं, लेकिन उनमें इतनी निर्भयता, इतना बल कहां से आ गया? उत्तर मिलता है कि उन्होंने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों पर व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सत्य की प्रतिष्ठा को जीवन में रखा, परमात्मा के विश्वास के बल पर उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि मेरा परमात्मा मुझ में विद्यमान है, इसलिए उनमें इतना बल आ गया। और मैं हाय, मैं क्यों संसार की ओर देखती हूं? आलोचना सुनकर कान क्यों खड़े हो जाते हैं? प्रशंसा सुनकर चित्त प्रसन्न क्यों हो जाता है? बड़ी गरीबी। ऐसा इसलिए होता है कि सत्य की प्रतिष्ठा से, उस घटघट बासी से, उस सर्वव्यापी से अभी तक अपनी सन्निधि का अनुभव नहीं हुआ। ये खास बात है। साधक समाज के लिए बड़ी आवश्यक बात है कि हम दूसरों की ओर देख देख करके समय और शक्ति का अपव्यय न करें, या तो सर्वहितकारी कार्य करें, या कार्य करने का मौका न हो तो एकदम अकेले छिप जाओ, चुप हो जाओ, अपने को देखो, अपने को पढ़ो, कहां भूल है, कहां दोष है, कहां गलती हो रही है, उसको सुधारने के लिए अपने को सचेष्ट होना है अपनी ओर से। और मंगलमय की मंगलकारिता जो सदा सदा के लिए सभी भाई बहनों के साथ विद्यमान ही है, वह तो काम कर ही रही है। सचेष्ट होना मेरा काम है और सफलता दिलाना जीवन दाता का काम है। अपनी दुर्बलता को पकड़ करके सामने रखना मेरा काम है और उस दुर्बलता से ऊपर उठ जाने की सामर्थ्य देना सामर्थ्यवान का काम है। अपना काम मैं करूं और सत्य संकल्प परमात्मा तो अपने कर्तव्य से कभी चूकते ही नहीं है। उनकी घड़ी कभी स्लो और कभी फास्ट होती नहीं है, एकदम ज्यों का त्यों जैसे कि तैसे सदा सदा से वे हमें संभालते आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात मुझे बहुत पसंद आती है। रामायण में एक जगह लिखा है, कौशल्या मैया एक बार देवता का पूजन करने के लिए पकवान बना रही थी। बालक को पालने में सुला दिया था, पकवान मिष्ठान बना करके देवता के घर में पूजा करने गई, नैवेद्य चढ़ाया तो राम जी बैठ करके खाने लगे। मैया घबरा गई कि मैं तो पालने में सुला करके आई थी, यहाँ कौन आ गया। बहुत घबरा गई, माँ का हृदय भगवान राम को वो बालक ही समझ रही थी, तो सोचने लगी कि मेरी मति भ्रम हो गई कि क्या हो गया। तब गोसाई जी कहते हैं, दिख रावा माता हिनिज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड। पढ़ करके मुझको बड़ा मजा आता है। जब मैं अपनी किसी दुर्बलता से नर्वस होती हूँ तो कहती हूँ कि मेरे लिए तो बड़ी कठिन बात हो गई है, लेकिन आपके लिए कुछ कठिनाई नहीं है। हे भगवान, आपके एक एक रोम पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निवास करता है। आपके लिए एक साधक की दुर्बलता को दूर करने में क्या मेहनत लगती है महाराज? उनको श्रम नहीं लगता है, वे हमारी सब दुर्बलताओं को दूर कर सकते हैं, कर देते हैं, करते ही रहते हैं। और नहीं तो गुणों के अभिमान में, क्रोध में आके मैंने क्या अनर्थ नहीं किया होता, लेकिन वे तो थामते ही रहते हैं। विषय तृष्णा के लोभ में आकर के पता नहीं मैं किस पतन के गड्ढे में गई होती, लेकिन वे तो रोकते ही रहते हैं, संभालते ही रहते हैं। इसलिए मानव सेवा संघ ने सामूहिक सत्संग के साथ साथ व्यक्तिगत सत्संग को बड़ा महत्व दिया। और अभी तो यह सामूहिक समारोह का सत्संग खत्म ही हो जाएगा, आप सभी अपनी अपनी जगह पर वापस जाएंगे। आप अपने को साधक मानते ही हैं, सत्य की उपासना, प्रभु की उपासना को आपने पसंद ही किया है, कुटुंब परिवार समाज का हित आप चाहते ही हैं, तो 24 घंटे में से 2-3 बार का समय जरूर निकालिएगा, अकेले में बैठ करके अपने को देखिएगा, देखिएगा कि मेरी वाणी में सत्य है कि जीवन में भी सत्य है, मेरे बाहरी आचार व्यवहार में सदाचार है कि जीवन में भी सत्य की प्रतिष्ठा है, मिथ्याचार का नाश हुआ कि नहीं, दंभ का नाश हुआ कि नहीं। आप देखिएगा, बहुत सहायता मिलेगी, बहुत जागृति आएगी। श्री महाराज जी जब मुझसे ग्रंथ लिखवाते और मैं बीच बीच में कुछ पूछती, तब यह कहते थे कि देवकी जी बोलो मत, चुपचाप लिखो। जब शास्त्र के नाम पर, परमात्मा के नाम पर आने वाली पीढ़ी भड़केगी तो यह विचारधारा उनको मार्ग दिखाएगी। परमात्मा का नाम लिए बिना मनुष्यता की स्थापना कर देना, किसी धर्म विशेष का नाम लिए बिना मनुष्य के जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा कर देना मानव सेवा संघ की अपनी विशिष्टता है। मानव सेवा संघ के साहित्य में कहीं भी आप किसी मजहब का आग्रह और विरोध नहीं पाएंगे। मजहब के घेरे की सीमा को तोड़ करके महाराज ने साहित्य लिखवाया। ऐसा है यह मानव सेवा संघ। इसके सत्य को हम सब लोग स्वीकार करें और अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अपने अपने स्तर से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की चेष्टा में हम लगे रहें। तो चेष्टा में लगे रहना हमारा अपना पुरुषार्थ है और बाँह पकड़ करके अनंत से मिला लेने का बाना तो उन्हीं का है। वे ही कर देंगे और जरूर कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। उनके नाम पर जिसने कदम उठाया है वह असफल कभी नहीं होगा, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब शांत हो जाइए। मानव जीवन की सफलता इस बात में है कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व सेवा, त्याग और प्रेम से भरपूर हो जाए। सेवा शब्द का अर्थ क्या है? तो मानव सेवा संघ की प्रणाली में सबसे सूक्ष्म अर्थ सेवा का यह लिया गया कि दुखी मात्र को देखकर करुणित होना और सुखी मात्र को देखकर प्रसन्न होना, इसको सेवा का सूक्ष्मति सूक्ष्म रूप बताया गया। दुखी मात्र को देखकर करुणित होना, इस स्वभाव से साधक को
अपनी साधना में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। दुखी मात्र को देखकर करुणित होना स्वभाव बहुत ऊंचा है। इससे क्रियात्मक सेवा तो बनेगी ही। जब हृदय पर पीड़ा से पीड़ित हो जाएगा तो कुछ किए बिना कैसे रहा जाएगा? रहा तो जाएगा नहीं, सेवा तो बनेगी। परंतु एक बहुत बड़ा उपकार यह होगा कि जो भी कुछ आप थोड़ा कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए, उस प्राणी के लिए, उतना तो करेंगे ही। लेकिन भावना जो होगी आपकी, वह सेवा की सामग्री की तुलना में बहुत विस्तृत होगी, बहुत व्यापक होगी। और उसका एक सहज परिणाम यह होता है कि दुखी का दुख यदि आप दूर नहीं कर सकते हैं तो आपके भीतर जो करुणा जगती है, उस करुणा से कोई सामर्थ्यवान प्रेरित होकर आकर के उसकी सहायता कर देगा। ये बिना किसी से कुछ कहे सुने चुपचाप अपने आप होता है। बहुत विचित्र बात है। ऐसी सूक्ष्म सेवा के ढंग पर हम लोगों का, सब किसी का ध्यान जाता नहीं है। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि क्या बताएं, उस दुखी को तो देखा, लेकिन भाई करुणित होने मात्र से क्या होगा? उससे उसका पेट थोड़े भर जाएगा भूखा है तो, उससे उसकी प्यास नहीं मिट जाएगी प्यासा है तो, उससे उसका रोग नहीं मिट जाएगा बीमार है तो। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि खाली करुणित होने से क्या होता है। लेकिन यह प्रकृति का बड़ा एक अनुपम विधान है कि सचमुच किसी का दुख यदि आपके दिल में ऐसा भर गया कि उसको आप अपना दुख करके मानते हैं, तो आप सामग्री से तो भले ही मामूली कुछ कर पाए अथवा न कर पाए, आपके दिल में दूसरे की पीड़ा जब भर कर जाएगी, उससे करुणा का रस उपजेगा। उस करुणा में इतनी शक्ति है कि वो किसी सामर्थ्यवान को पकड़ लाएगी। लेकिन सचमुच आपके दिल में दर्द है तो वो दर्द ही काफी है किसी सामर्थ्यवान को प्रेरित करके वहाँ ले आने के लिए और उस दुखी की मदद करवाने के लिए। इतना बड़ा रहस्य है पर पीड़ा से पीड़ित होने का। हम लोगों का ध्यान इस बात पर नहीं जाता है। हम लोग वस्तु से किसी की मदद करने को बड़ी बात समझते हैं, और अगर वस्तु से मदद नहीं कर सके तो अपने को असमर्थ समझते हैं। मानव सेवा संघ की प्रणाली में स्वामी जी महाराज ने अपने अनुभूत सत्य को रखा है, और महाराज जी के मन से ही मैंने ऐसा सुना और उनको ऐसा करते हुए देखा भी है। केवल सुना ही नहीं है। मध्य प्रदेश से एक परिवार स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए आया। रात को 9 बजे होंगे तो मैंने उनको बैठाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि माता जी, स्वामी जी महाराज से आराम करने का समय हो गया है तो कृपा करके आज आप चले जाइए, कल सवेरे आइएगा तो भेंट हो जाएगी। और वो महिला रोज रोज किसी तरह से जाने को राजी ही नहीं। भनक तो स्वामी जी के कान में पहुंच गई। झट से उन्होंने बुलाया, क्या बात है, जल्दी से बुला लिया अपने पास। क्या जाने घंटा भर उन लोगों ने क्या क्या अपना दुख सुनाया, मुझे कुछ नहीं पता। चली गई सुना करके, 10:15 हो गए होंगे। उसके बाद मैं भी लेट गई, बड़ी माता जी भी लेट गई, स्वामी जी भी लेट गए। अब थोड़ी देर के बाद उठ के बैठ रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में उठ के बैठ रहे हैं। तो माता जी से मैंने धीरे से पूछा कि माता जी मैं स्वामी जी से पूछूं कि क्या हो रहा है, क्यों उठ के बैठ रहे हैं। तो ये मुझसे ज्यादा जानती थी महाराज जी को। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ मत कहो, चुपचाप रहो, तो तुम चुपचाप लेट जाओ, स्वामी जी को टोको मत। किसी ने कुछ दुख सुनाया होगा, उसके दर्द से व्याकुल होंगे, तुम मत बोलो। बोली तो नहीं मैं, इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, माता जी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वामी जी का उस तरह से व्याकुल होना मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार देखूं कि क्या हो रहा है। बहुत देर तक ऐसे ही हुआ। फिर तो उठने का समय हो गया, प्रार्थना का समय हो गया, स्नान का समय हो गया, यूं रात कट गई। दूसरे दिन 9 बजे सवेरे दिन में वही परिवार आया स्वामी जी के पास, और वे लोग बता के गए कि महाराज हम लोगों का काम हो गया। ये करुणा का प्रताप मैं बता रही हूँ आपको। दूसरे दिन जब 9 बजे के करीब आए तो फिर और दुख सुनने नहीं आए और मदद लेने नहीं आए। बड़े इत्मीनान से आश्वस्त होकर के आए और महाराज जी से कहा कि महाराज जी हम लोगों का काम हो गया, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। और चले गए वापस। उस समय तो नहीं, लेकिन किसी दूसरे अवसर पर मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी क्या होता है। तब उन्होंने पहले अपनी तकलीफ बताई और उसके बाद साधक के जीवन में पर पीड़ा का घर कर जाना, दूसरे की पीड़ा मुझको अपनी पीड़ा की तरह महसूस होने लगे, इस बात की महिमा बताई उन्होंने। तो बाहरी लाभ तो ये हो गया कि जिस व्यक्ति की पीड़ा से आप दुखी हो गए हैं, उसको किसी सामर्थ्यवान ने मदद कर दिया और उसका काम बन गया, ये बाहरी लाभ हुआ। और आंतरिक लाभ क्या होता है कि जिस साधक के जीवन में करुणा का रस उद्वेलित होता है, उस साधक के व्यक्तित्व में से जन्म जन्मांतर से जमा हुआ सुख भोग की वासना का नाश होता है। बहुत बड़ी बात है। कितना व्रत करेंगे हम लोग, कितना उपवास करेंगे हम लोग, कितना इंद्रियों का दमन करेंगे हम लोग, कितना जबरदस्ती भजन पूजन करके उसको दबाने की चेष्टा करेंगे, उससे वो काम नहीं बनता जो काम पर पीड़ा से पीड़ित होने के कारण हृदय में जब करुणा उपजती है तब हो जाता है। तो अब आप सोच करके देखिए कि किसी दुखी का दर्शन हुआ आपको, तो उसको लाभ ज्यादा हुआ कि अपने को लाभ ज्यादा हुआ? जी अपने को लाभ ज्यादा हुआ। लेकिन साधक के जीवन की बात क्या है कि उसे सेवा का व्रत तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो जान बचेगी नहीं, उसके बिना राग मिटेगा नहीं। लेकिन उस सेवा में क्रिया का महत्व जितना है, उससे कहीं अधिक भाव का महत्व है। पीड़ित अगर आपको अपने से छोटा मालूम होता है और आपको ऐसा लगे कि मैं तो भाग्यशील हूँ, परमात्मा ने मुझको सामर्थ्य दी है, तो दीन दुखी की सेवा करो। अपनी अपेक्षा कोई दीन दिखाई दे रहा है तो आपकी सेवा का वो फल नहीं होगा जो होना चाहिए, क्योंकि किसी को मैंने दीन समझा तो इसका मतलब ये है कि मुझको अपने में समर्थ होने का अभिमान है। इतनी सूक्ष्म बात है। तो ऐसे मुझको तो उतनी हिम्मत नहीं है वैसे बात करने की, लेकिन स्वामी जी महाराज को तो मैंने सुना है कि जब पैसे वाले लोगों के बीच में बैठते तो वे कहते कि अगर तुमको अपने पैसे का महत्व मालूम होता है और दूसरा कोई तुमको दरिद्र दुखी दिखाई देता है और अपने से छोटा समझ करके उसकी तुम मदद करते हो, तो तुम्हारे में धन का अभिमान बढ़ेगा और उस गरीब में धन का लोभ बढ़ेगा। अभिमानी आदमी जब किसी की सेवा करता है, सेवा शब्द का तो प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, बल का अभिमानी और धन का अभिमानी जब किसी को कुछ देता है, कुछ मदद करता है अभिमान के साथ, तो उसके अभिमान के कारण उसकी वस्तु को लेने में दूसरों में दीनता उत्पन्न होती है, अपनापन नहीं उत्पन्न होता, अपनेपन के भाव की वृद्धि नहीं होती। तो क्या हो गया, शरीर की तो उसकी रक्षा हो गई, आपने भूखा समझ करके खाना पहुंचा दिया तो शरीर को तो पोषण मिल गया, लेकिन उसका मन बहुत भिखारी बन गया। स्वामी महाराज ने इस सेवा को बड़ी भारी कुसेवा बताया। सोचने की बात, कुसेवा क्यों? एक कुसेवा तो मैंने अपनी की कि अभिमान पाला अपने में, और दूसरी कुसेवा उस व्यक्ति की कि जिसके मन के भीतर दीनता आ गई, इंफीरियोरिटी आ गई, धनी को देख करके ईर्ष्या आ गई, तो अपना भी अपकार हो गया, उसका भी अपकार हो गया। बड़ी सोचने की बात है, बहुत समझ बूझ कर चलने की बात है। तो साधक के जीवन में सेवा चाहिए और जो सेवा करने चलता है उसको अपनी सेवा पहले करनी चाहिए। अपनी सेवा क्या करोगे, तो मानव सेवा संघ ने सलाह दी कि अपनी सेवा पहले ये कर लो कि मिली हुई सामर्थ्य मेरी नहीं है, तन में बल मिला है तो मेरा नहीं है, हाथ में पैसे मिले हैं तो मेरे नहीं है, संगी साथी मिले हैं तो मेरे नहीं है, ये किसके हैं भाई, किसके हैं? तो भौतिकवादी हो तो अपने को ऐसे समझा लो कि जिनको इसकी जरूरत है ये चीजें उसकी हैं, तो जिसकी वस्तु है उसको देने में कोई किसी को अभिमान आएगा जी? नहीं आएगा। आपकी वस्तु है, आपको मैं देना चाहती हूँ, तो जितनी जल्दी आप ले लेंगे मुझसे मुझे बड़ा हर्ष होगा, और जब तक आप उसको ले नहीं लेंगे तब तक उसकी सुरक्षा का दायित्व तो अपने पर रहेगा। तो दे देने में आदमी ऋण मुक्त हो जाता है। भौतिकवादी है तो ऐसा मानिए, धन किसका है, जिसको उसकी जरूरत है उसका है, शरीर का बल किसका है, जो निर्बल है जिसको उसकी जरूरत है उसका है, ये साधक का जीवन है। धन के बल पर, शारीरिक बल के आधार पर जो अहम का पोषण करना चाहता है, जो जन समाज में जय जयकार सुनना चाहता है, वह तो साधक की सूची में है ही नहीं। एक सज्जन मेरे पास आए, मानव सेवा संघ के परिचित हैं, स्वामी जी महाराज के पास बहुत आते थे, और दूर से शरीर के संबंध से रिश्तेदार भी लगते हैं, तो आए मेरे पास, कहने लगे कि मेरी माता जी का देहांत हो गया है, तो उनकी भावना बड़ी परोपकार की थी, तो मैं इतना इतना धन माता जी के हित के लिए परोपकार में लगाना चाहता हूँ, तो आप मुझे सलाह दीजिए कहाँ लगाऊं। तो मैंने कहा कि भैया अन्य संस्थाओं को तो मैं जानती नहीं हूँ, और मुझसे पूछने आए हो तो मैं मानव सेवा संघ का नाम लूंगी। तो मानव सेवा संघ में रोगी सेवा है, बालक सेवा है, गौ सेवा है, साधक सेवा है। जिस विभाग में चाहो तुम जितना दे दो मैं सब ले लूं और तुमको विश्वास दिला दूं कि सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। ये कह दिया मैंने। जो तुम्हारी भावना हो, रोगी की सेवा करना चाहो मेरे पास अस्पताल है, बच्चों की सेवा करना चाहो मेरे पास बाल मंदिर है, गौओं की सेवा करना चाहो मेरे पास गौशाला है, साधकों की संतों की सेवा करना चाहो वो भी मेरे पास है। जिस विभाग में देना चाहो और जितना देना चाहो सब दे दो मैं ले लूंगी, और विश्वास के साथ कह दूंगी कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। जो साधक सेवक वहां बैठे हैं वे खाएंगे नहीं, जिस भाव से तुम दोगे उसी सेवा में लगा देंगे। तो थोड़ी देर वे सज्जन सोचते रहे और सोचने के बाद कहने लगे कि आपकी संस्था तो इतनी विशाल है कि उसमें मैं कितना भी दे दूं तो उसमें जाके वो घुल मिल के खत्म हो जाएगा, तो मेरी माँ के नाम पर अलग कुछ दिखाई तो नहीं देगा। अब सोच लो। तो मैंने कहा नहीं, सो तो नहीं होगा, वो तो हमारी विशाल सेवा है और वहां तो सेवा करने वाले का हित देखकर स्वामी जी महाराज ने ऐसी प्रथा बढ़िया बना दी है कि कोई लाख करोड़ भी दे जाए तो और कोई दो पैसा दे जाए तो दूसरों के मन पर अंतर का कोई आधार नहीं है। कुछ नहीं पता चलता है कि किसने कितना दिया है और दाता का इसी में हित है। तो कहा कि तब वैसे मैं नहीं करूंगा, मुझको तो कुछ ऐसे करना है कि वो अलग से संस्था के लोग उसको संभालें भी, उसको काम में भी लाएं और अलग से मेरी माता जी का नाम भी रहे और दिखाई भी दे कि हाँ माँ के बेटे ने ऐसा किया है। तो मैंने कहा ऐसा मानव सेवा संघ में नहीं हो सकता, जहाँ हो सकता है वहां जाओ वही करो। तो मानव सेवा संघ की प्रणाली में कोई भी साधन जो हम लोगों के सामने रखा गया वो वस्तु को दृष्टि में रखकर नहीं दिया गया। वस्तु का महत्व नहीं है, वस्तु तो आज आपके पास है और कल किसी और के पास जाएगी। संपत्ति आज आपके पास है, कल और किसी के पास जाएगी। अगर आप हर्षपूर्वक निरभिमानी हो करके सेवा कार्य में लगा देंगे तो उसका एक विशेष फल आपको मिल जाएगा। निरभिमानी हो करके ममता लोभ छोड़ करके सेवा में नहीं लगाएंगे तब भी वस्तु आपके साथ जाने वाली नहीं है, सदा के लिए आपके पास रहने वाली नहीं है। वो आप खुशी से दे दो तो और खुशी से ना दे दो तो जबरदस्ती छूटेगी जरूर, रहेगी नहीं आपके पास। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, सेवा करने का अधिकारी कौन है जो सबसे पहले वस्तु की ममता को छोड़ सके, वो सेवा का अधिकारी है। और उसकी सेवा का फल क्या होता है कि उसके अपने जीवन में से राग की निवृत्ति हो जाती है और ऐसे राग निवृत्ति का साधन करने वाला सेवक जब किसी की सेवा करता है तो उस सेवक में सेवा की पवित्र भावना जग जाती है। ये कसौटी है कि हमने ठीक सेवा की। सेवा करने वाले में राग की निवृत्ति हो जाए और जिसकी सेवा की जाए उसमें सेवा का भाव जग जाए, वो खुद सेवक बनने के लिए लालायित हो जाए, तब तो समझना चाहिए कि मैंने ठीक सेवा की। और सेवा में यदि लालच पैदा हो गया, सेवा में अगर लालच पैदा हो गया तो इसका मतलब है कि मैंने ठीक सेवा नहीं की। शरीर के द्वारा सेवा करो तो, धन के द्वारा सेवा करो तो, जिसकी सेवा की गई उसमें विलासिता पैदा हो जाए, उसमें ये लालच पैदा हो जाए कि ये तो बड़े उदार पुरुष हैं, तो जितना इनमें से निकल सके उतना निकाल के ले लो, इस तरह का स्वार्थ और विलास पैदा हो जाए तो सेवक को धीरज रखकर अकेले में बैठ करके सोचना चाहिए कि मेरी सेवा की वृत्ति में कहीं कोई गलती हो गई जरूर। मैंने दोनों ही तरह के उदाहरण जीवन में देखा। महाराज जी के पास आने से पहले मैं समाज की सेवा करने की भावना रखती हूँ, इस बात का बड़ा आभास था अपने में। उस समय भी मैंने करके देखा, असाधन काल में की गई सेवा से जिसकी सेवा की मैंने, उसमें अधिकार लालसा पैदा हो गई बड़े जोरों से। ये मेरी अपनी जानी हुई बात है। महाराज के संपर्क में आने से पहले शौक होता है ना व्यक्ति का, सुख भोगने का दरवाजा बंद हो गया विधान से, तो सेवा करके समाज में नाम कमाने का शौक पैदा हो गया। एक सीढ़ी ऊपर है सही, लेकिन है तो व्यक्तित्व की पूजा ही। तो जो मुझे सूझा सो मैंने किया, और जिसके लिए किया उसका चौपट हुआ, क्योंकि उसमें अधिकार लालसा जग गई। तो महाराज जी की वाणी जो है उसमें इतना सत्य है, इतना सत्य है कि जिसको चाहिए वो प्रयोग करके देख ले। मैंने किसी को कहा कुछ नहीं, कभी नहीं कहा, लेकिन जिस धन का अभिमान मुझ में था, उस अभिमान युक्त वस्तु से सेवा करने पर हृदय में अधिकार लालसा जग गई, और महाराज जी के समझाने से, उनकी सलाह से कमाई हुई संपत्ति को अपना मानने की भूल छूट गई, तो उसका कुछ दूसरा ही फल दिखाई देने लग गया, उसका कुछ दूसरा ही परिणाम दिखाई देने लग गया। तो ये बात मैं बिल्कुल सत्य आपकी सेवा में निवेदन करती हूँ कि किसी भाई को, किसी बहन को, किसी दुखी की मदद करने का जी में आवे तो पहले उस वस्तु की ममता तोड़ो जिस वस्तु से सद्य की सेवा करनी है, उसी की मानो चाहे परमात्मा की मानो, अपनी मान कर किसी को कुछ मत देना। न देने से उतनी हानि नहीं होगी कि ममता की वस्तु देने से दूसरे की ज्यादा हानि होगी। तो पहले अपनी सेवा करें हम लोग। प्राप्त सामग्री मेरी नहीं है, प्राप्त सामग्री मेरे लिए नहीं है, जो लेने के लिए मेरे सामने खड़ा है वह उसने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, ऐसा मानो। और नहीं तो प्रभु की लीला ऐसी अपरंपार होती है कि आप अपने अभिमान को पालने के लिए किसी को कुछ देना चाहते हैं तो दूसरे में न लेने का भाव पैदा हो जाता है, अपना समूह लिए आदमी रह जाता है। आप देना चाहते हैं जिसको, वो इनकार करता है, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। तो देने का जो अभिमान लेकर चला है देने, उसके अभिमान से बड़ी ठेस लगती है। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं देना चाहूं तो कोई दे ही दे। इसलिए अगर कोई लेने के लिए आपके पास आ गया है दैव योग से, तो उसको छोटा समझ के मत लीजिए, उसको नीच समझ के मत लीजिए। ऐसा सोचिए कि मैं तो साधक हूँ, वस्तुओं का मैं करूँ क्या, अगर इसका अधिकारी मेरे पास अपने आप लेने को आ गया है तो भीतर भीतर जीवन दाता, जन्म दाता, सामर्थ्य दाता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके वस्तु दीजिए। तो वस्तु का महत्व बहुत थोड़ा होगा और निरभिमानता पूर्वक की गई सेवा का महत्व बहुत बड़ा होगा। तो मानव सेवा संघ ने इसको सेवा कहा। दुखी मात्र को देखकर करुणित होना, सुखी मात्र को देखकर प्रसन्न होना, तो दुखी को देखकर करुणित होने की अपेक्षा सुखी को देखकर प्रसन्न होना और महंगा पड़ता है। साधक को इसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुखी को देखकर करुणित होने में कुछ अपना मूल्य बढ़ता है तो व्यक्ति को अच्छा लगता है, शांति मिलती है भीतर से। थोड़ी ही सामग्री है तो क्या, अगर किसी को जरूरत है तो दे करके हृदय शीतल होता है, अच्छा हुआ, अच्छी जगह में पहुंच गया, अच्छा हुआ अमुक व्यक्ति के दुख में ये सामग्री काम आ गई। तो इसमें एक व्यक्ति को थोड़ी भीतर से शीतलता मालूम होती है, अच्छा लगता है। लेकिन जब अपने से ऊंची परिस्थिति वाले को देखो और देख करके दिल में ईर्ष्या पैदा न हो तो उस शुद्ध हृदय में ईश्वर का ईश्वरत्व प्रकट होता है। सुखी मात्र को देखकर प्रसन्नता हो जाए तो ये शुद्ध चित्त की निशानी है और सुखी को देखकर जलन पैदा हो जाए या अपने में हीनता का भाव पैदा हो जाए तो ये अशुद्ध चित्त की निशानी है। मानव सेवा संघ की प्रणाली में सेवा के अर्थ में दोनों पक्ष बताया गया, दुखी को देखकर करुणित होना और सुखी को देखकर प्रसन्न होना। करुणित होना जितना आवश्यक है, प्रसन्न होना उससे अधिक आवश्यक है। इसमें व्यक्ति का बड़ा विकास होता है और आप देखेंगे कि जिन लोगों के दिल में सुख की वासना नहीं है वे सुखी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। छोटे छोटे जानवर के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, बकरी के बच्चे, गाय के बच्चे माँ के पास खेल कूद रहे हैं, बड़ा आनंद आता है उनको देख करके, बड़ी खुशी होती है, बड़ा मजा आता है। और दिल में किसी प्रकार की सुख की वासना दबी हुई है तो वासना के कारण जिसका चित्त अशुद्ध है उसको सुखी को देखकर प्रसन्नता नहीं होती, सुखी को देखकर उसमें दोष दर्शन होने लगता है। अच्छा, ये इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे बात करते हैं, तो और कोई भी बुराई आप नहीं करेंगे, बड़े सज्जनता का व्यवहार करेंगे तब भी सुखी के सुख ने जो आप में एक हीनता पैदा की, उस हीनता की प्रतिक्रिया में उस सुखी व्यक्ति में दोषों का दर्शन होने लगता है और आदमी सामने नहीं तो पीछे में उसकी आलोचना करता रहता है। ये आलोचना जो है ये एक प्रकार से विरोधी प्रतिक्रिया है, वर्बेटिव है, बोल के करना। सज्जनता तो सुरक्षित है, उसका नुकसान तो मैंने कुछ नहीं पहुंचाया, लेकिन उसके सुख ने मेरे हृदय को हर्षित नहीं किया तो और कुछ नहीं तो कम से कम उसको क्रिटिसाइज करने में तो मजा आएगा, और सामने नहीं तो पीछे में। ये क्या है? ये अपने चित्त की अशुद्धि है। वासना रहित चित्त जब होता है तो सुखी मात्र के सुख से बड़ी प्रसन्नता होती है। साधक समाज के लिए, हम भाई बहनों के लिए यह एक कसौटी है कि हम देख सकें कि हमारा चित्त में, हमारे चित्त में निर्वासना है कि नहीं। किसी भी प्रकार का कोई सुख दिखाई दे और उससे अपने में हर्ष हो जाए, बड़ा अच्छा है। भगवान सबको सुखी रखो, भगवान को सदा आनंदित रखो। अपने बाल बच्चे को सुखी देखकर जैसा आनंद आता है, किसी भी अपरिचित बच्चे को हंसता खलता देखकर हृदय हर्ष से भर जाए, तो ये साधक का लक्षण है, ये चित्त की शुद्धि का लक्षण है। और सेवक का तो बड़ा भारी धर्म है, दुखी मात्र के दुख से करुणित होना और सुखी मात्र के सुख से प्रसन्न होना, यह है चलते फिरते, बात व्यवहार करते, उठते बैठते हम सब लोगों को अगर ध्यान में रहे तो हमारी सेवा की प्रवृत्ति से अपना भी बड़ा उपकार होगा। और जिस जन समाज में हम सेवा करने के लिए प्रवेश करते हैं, उस जन समाज में भी बहुत उन्नति होगी। तो मानव सेवा संघ का उद्देश्य है व्यक्ति का कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण। तो हम लोगों को बड़ी बड़ी योजना नहीं सोचनी है, निकटवर्ती जन समुदाय जो हमारे आसपास के रहने वाले हैं, उन्हीं में से जहां दुख दिखाई दे हृदय में करुणा उपजे, जहां सुख दिखाई दे हृदय में प्रसन्नता आ जाए, कि जिस हृदय में करुणा और प्रसन्नता का निवास होता है, जो व्यक्ति स्वयं अपने आप ही प्रसन्न रहता है, उस प्रसन्न चित्त में काम की उत्पत्ति नहीं होती। जीवन में नीरसता जब आती है तो कामनाओं की वृद्धि हो जाती है, और जिस चित्त में प्रसन्नता निवास करती है उस चित्त में कामनाओं की उत्पत्ति नहीं होती। तो आप सोच करके देखिए कि ध्यान लगाने में, भजन करने में, शांत रहने में, समाधि लगाने में अगर कुछ बाधा है तो मन और चित्त की चंचलता ही बाधा है, और तो कोई बाधा है नहीं। और इस बाधा को मिटाने के लिए साधक कितना कितना प्रयास करता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इन बाधाओं का अंत नहीं होता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दुखियों के दुख में शामिल होना शुरू कर दो, तुम्हारे चित्त की अशांति चली जाएगी। और जिन्होंने किया है, करके उन्होंने देखा है, बड़ी शांति रहती है, बड़ी प्रसन्नता रहती है। उसका प्रतिकार समाज मुझको क्या देगा, इसकी चिंता सच्चे सेवक को कभी नहीं होती। करने का मौका लग गया, किया, और स्वांत सुखाय, वो अपने आप में ही सुखद है, दूसरों से कुछ लेने देने की आशा कुछ है ही नहीं। अपनी मस्ती में किए जाओ और आनंद में मस्त रहो। जिन साधकों ने सेवा व्रत के आधार पर संपूर्ण जीवन को साधन में बनाना पसंद किया, वे आज भी अपनी सीमित शक्ति के साथ ही काम करने में खूब मस्त हैं। ये सेवा का अर्थ हुआ। और त्याग में आपने सुना ही है जो सदा सदा के लिए अपने साथ नहीं रह सकता, उन सबके साथ संबंध विच्छेद कर दो, ये त्याग है। मनुष्य वचन परिभाषा नहीं बनाएगा और सूची नहीं लिखवाएगा। हम लोगों के सामने एक सूत्र रख दिया गया, अब अकेले जाके बैठ करके सोचो कि मेरे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सदा के लिए मेरे साथ नहीं रह सकती। उन सब की ममता तोड़ दें, उन सब से संबंध तोड़ लें, ये त्याग हो गया। और प्रेम का अर्थ क्या है? जो सदा सदा से मेरे साथ है, जो सदा सदा तक मेरे साथ रहेगा, उसी को अपना मानो, उसी के होकर रहना पसंद करो, उसी का काम करो। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा सदा उसी में नित्य वास रहेगा। ये प्रेम की पूर्णता है। उसी को अपना मानो, उसी से संबंध रखो, उसी के होकर रहना पसंद करो, उसी का काम करो। तो क्या होगा? अपना नित्य वास उसी में रहेगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो सेवा, त्याग, प्रेम, इसी को मानव जीवन की सफलता की कुंजी बताया महाराज जी ने। जो सेवक हो सकता है उसकी राग निवृत्ति हो जाएगी, जो त्याग कर सकता है वो अशरीरी जीवन में प्रवेश कर जाएगा, जो प्रभु का प्रेमी हो सकता है वो भक्त हो जाएगा, उसका जीवन प्रेम से भरपूर हो जाएगा। तो आज से लेकर अंत तक मतलब शरीर के नाश होने की घड़ी तक नहीं, अंत जब मैं कहती हूँ तो उसका अर्थ है कि मेरा जो सीमित अहम भाव है, जिसको लेकर मैंने आज अपने को वक्ता स्वीकार किया, आपको श्रोता स्वीकार किया, मैं बोल रही हूँ, ये मेरा विचार है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा मत है, तो मैं और मेरा जिसमें से निकल रहा है, उस सीमित अहम भाव का रूपांतर हो जाए। किसमें रूपांतर हो जाए? ज्ञान और प्रेम में। तो जब तक ये पूरा हो जाए तब तक के लिए मैं कहती हूँ। आज हम लोगों ने सेवा, त्याग और प्रेम के व्रत को अपनाया, तो आज से लेकर, इस क्षण से लेकर तब तक हम सेवक, त्यागी और प्रेमी बने रहेंगे, तब तक बने रहेंगे जब तक कि सीमित अहम भाव ज्ञान स्वरूप होकर, प्रेम स्वरूप होकर उस अनंत में विलीन न हो जाए, तब तक इन व्रतों का पालन हम सब भाई बहनों को करना है। सेवा, त्याग, प्रेम, फिर उसके बाद में पूछा जाएगा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, कौन है। मानव सेवा संघ नहीं पूछता है। ये नीचे की सीमा की बात, सांप्रदायिक भेद मानव सेवा संघ में नहीं है। आप साधक हैं, ठीक है, कैसे आपका विकास होगा? सेवा, त्याग, प्रेम से। अब इन तीन व्रतों को ले लो और उसके बाद चाहे किसी गुरु से दीक्षा ले लेना, और चाहे किसी संप्रदाय में शामिल हो जाना, और चाहे अपने को कुछ भी स्वीकार कर लेना, और चाहे सब कुछ अस्वीकार कर देना, संघ आपसे नहीं पूछेगा। आपकी अपनी खुशी, अपनी स्वाधीनता, जहां जाइए जो करिए। मनुष्य हो करके यदि सेवा, त्याग, प्रेम का व्रत ले लिया तो यह व्रत आपको पूर्णता तक अवश्य पहुंचा देगा। हो गई पूर्णता?
दुख का भोगी प्राणी सुख दुख में आबद्ध रहता है। सुख दुख का बंधन सेवा तथा त्याग से ही मिट सकता है। सुख का सदुपयोग सेवा में और दुख का सदुपयोग त्याग में निहित है। अतः सुख दुख से मुक्त होने के लिए सेवा तथा त्याग को अपना लेना अनिवार्य है। दुख का भोग अहितकर और दुख का प्रभाव हितकर सिद्ध होता है, कारण कि दुख का भोग सुख की दासता को पुष्ट करता है और दुख का प्रभाव सुख की दासता को नष्ट करता है। इस दृष्टि से मानव जीवन में दुख के प्रभाव का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि समस्त विकास दुख के प्रभाव में निहित है। अतः दुख का प्रभाव विकास के लिए अनिवार्य है। समस्त सृष्टि सुख दुख का समूह है, इसी कारण कोई भी प्राणी सुख दुख से रहित नहीं है, किंतु फिर भी सुख दुख जीवन नहीं है, क्योंकि दोनों ही आगमापायी हैं। अतः मानव को सुख दुख से अतीत जो जीवन है उसकी खोज करना अनिवार्य है। कल्याण की आवश्यकता कल्याण का सच्चा मार्ग है। सदगुरु कृपा कल्प वृक्ष है। ऐसी अवस्था में भी कल्याण की चिंता करना प्रमाद के अतिरिक्त कुछ अर्थ नहीं रखता। भोले भोले किसान की भांति सदगुरु के दिए हुए बीज स्वरूप परम सत्य को अपने में बोकर विकल्प रहित हो जाओ। यथाशक्ति सत्संग के जल से उसे सींचते रहो। अनंत काल के दोष सत्य को अपनाते ही स्वतः मिट जाते हैं। भूतकाल भूल जाओ। वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग कर असंग हो जाओ। अपने में ही अपने प्रेम पात्र की स्थापना कर अचिंत हो जाओ।